प्रिय श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हैं और हमें विश्वास है कि आप सब आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है प्रेम। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो हमारे कार्यक्रम को पहली बार सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, लेकिन इससे पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे सामर्थ्य और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है, ताकि प्रभु हम आपके जीवित वचन का अध्ययन फिर से रेडियो के माध्यम से कर सकें। इस समय हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके अपने प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक से हम अध्ययन आरम्भ करते हैं। प्रार्थना है कि हर एक को आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि एक एक श्रोता भाई बहन इस पुस्तक की उन बातों को समझ सके, जान सके और अपने जीवन में लागू कर सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है, उन माता पिताओं के लिए भी है जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव और तनाव में हैं। पिताजी, आप उन्हें शांति प्रदान कीजिए। यदि किसी परिवार में फूट है, ईर्ष्या है, आप उनका भी समाधान करें। आज अपने वचन के द्वारा से हम सब से बोले और बातचीत करें। संसार के हर एक बुराइयों से, बुरी चिंताओं से आप सबकी रक्षा करें। धन्यवाद देते हैं पिताजी हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, आइए आप मेरे साथ श्रेष्ठ गीत की पुस्तक एक अध्याय उसके 10 और 11 पद को निकाल लीजिए, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, तेरे गाल केशों की लटों के बीच क्या ही सुंदर हैं और तेरा कंठ हीरो के लड़ियों के बीच। हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तेरे गाल क्या ही सुंदर हैं। उसका गला सुंदर है, कैसी मनभावर और घनिष्ठता की अभिव्यक्ति है। वह कहता है कि वह उसे आभूषण पहनाना चाहता है, वह उसे मूल्यवान नगीने और सोने के हार पहनाना चाहता है। वह शरीर के उन अंगों की चर्चा करता है जो प्रेम में उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। पति लोग तो पत्नियों की आंखें, गाल, कान आदि देखते हैं और पत्नियां पति के शरीर की बनावट। वह अपनी होने वाली वधु की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। आत्मिक क्षेत्र में वधु कलीसिया है और वर प्रभु यीशु है। क्या वह कलीसिया में सुंदरता देख पाता है? मेरे मित्रों, उसने तो हम सबको भटके हुए पापी देखा। यह शुनेम वासी लड़की अपनी सुंदरता को निखारती नहीं थी, परंतु फिर भी वह प्राकृति रूप से सुंदर थी। हम में ऐसा कुछ नहीं जो प्रभु यीशु को आकर्षित करे। हम उसे कुछ नहीं दे सकते, वही हमें सब कुछ देता है। इसराइल की भी यही दशा थी जब वह उन्हें बचाने के लिए आया था। उसने यह नहीं कहा, मैं तुम्हें बचाने आया हूं क्योंकि तुम एक ऊंची जाति के लोग हो, तुम मिस्रियों से अधिक अच्छे लगते हो। जी नहीं, वे ऐसे नहीं थे। सच तो यह है कि वे छोटे और घटिया लोग थे। उसने यह भी नहीं कहा तुम लोग मेरे विश्वासी जन हो। नहीं, वे तो मूर्ति पूजा में विश्वास से भटक गए थे। उन्होंने परमेश्वर का त्याग कर दिया था, वे अनैतिकता में डूब गए थे। तो फिर परमेश्वर के आकर्षित होने का क्या कारण था कि उसने उन पर समय गंवाया? इसका उत्तर परमेश्वर ने मूसा को दिया था। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 34 पद में पढ़ते हैं, मैंने सचमुच अपने लोगों को जो मिस्र में हैं दुर्दशा में देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं। उसके आकर्षित होने का कारण यही था, केवल उसका प्रेम और अनुग्रह ही उत्तर है। उनकी भटकी हुई दशा के कारण ही परमेश्वर ने उनकी मुक्ति का प्रबंध किया। परमेश्वर ने कहा कि उसे अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी हुई अपनी वाचा स्मरण थी। परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। जब वह कहता है कि कुछ करेगा तो वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने की इच्छा रखता है। मेरे मित्रों, हमारी खोई हुई दुर्दशा के कारण वह हमें मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित हुआ था, अपनी कलीसिया को मुक्ति दिलाने के लिए। परमेश्वर कहता है कि हम कुछ ना करें, बस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो उद्धार पाएंगे। यह हमारे लिए कितनी आसान अवसर है। हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। यह हमारे स्वर्गीय वर का चित्रण है कि वह विश्वासियों के लिए क्या करेगा। इफिसियों की पत्री 5 इसे अत्यधिक स्पष्ट करता है। प्रभु यीशु कलीसिया से प्रेम करता है और कलीसिया के लिए उसने अपनी जान दे दी। उसने यह इसलिए किया कि वचन के द्वारा जल के स्नान से उसका शोधन करे। यह तो एक चमत्कारी साबुन है। उसने ऐसा इसलिए किया कि वह निष्कलंक, झुर्री से रहित, पवित्र, निर्दोष कलीसिया को अपने लिए अलग करके रखे। कलीसिया को क्या हुआ? उसने हमें मुक्ति दिलाई, उसने हमारे लिए कीमत चुकाई, उसने हमारे पाप हटाकर अपनी धार्मिकता जोड़ी। हम मसीह की धार्मिकता से ढके हुए हैं, हम उसमें सिद्ध होते हैं और उस प्रिय में स्वीकार किए जाते हैं। आइए हम देखेंगे कि राजा की मेज पर भोजन करना। श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है, जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। कुछ लोग इसका अर्थ बताते हैं कि जब राजा राज्य का भ्रमण कर रहा था, तो कुछ कहते हैं कि राजा अपने भोज पर बैठा था। मेरे विचार में यह सबसे अच्छा अनुवाद है। वह उस तख्त पर आधा लेटकर भोजन करता था और उसके साथ अतिथि भी होते थे। इसका अनुवाद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पद गहरा आत्मिक अर्थ रखती है। वर अपने सब अतिथियों के साथ भोजन करता था। हम इतिहास में वर के भोजन में आने वाले अतिथियों को देख सकते हैं। उसके जन पर चरवाहे उसका दर्शन करने पहाड़ों से आए थे। उनके बाद पूर्वी क्षेत्र से ज्योतिष, सोना, लोबान और गंधरस लेकर के आए थे। इसे जॉन मिल्टन ने अपने शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है, पूर्व क्षेत्र के मार्गों पर दूर से सितारे की अगुवाई में सुगंधित वस्तुएं लिए शीघ्रता से वे आ रहे थे। ओह, शीघ्र करो, अपने विनम्र स्तुति से सुरक्षित करो और उसके धन्य पांवों में अर्पित करो और अपने प्रभु के अभिवादन का पहला सम्मान पाओ। भजन संहिता 23:5 में दाऊद कहता है, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तो उसके मन में भोज की इस मेज का विचार था। मैंने यह निमंत्रण सुना है और स्वीकार किया। मैं बहुत समय से उस मेज पर बैठा हूं। क्या आप इस मेज पर बैठे हैं? आपको भी निमंत्रण दिया गया है कि आप भी आए। यीशु आपसे कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय के 20 पद में हम इसे पाते हैं। आप मेज पर भोजन क्यों नहीं करना चाहते, मुझे आप बताइए। कभी किसी महापुरुष को राजा की मेज पर भोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ? जी हाँ, हुआ होगा, परंतु वह प्रभु यीशु की मेज की तुलना में कुछ भी नहीं है। जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। यह जटामासी की सुगंध मसीह यीशु के जीवन की सुगंध है। कैसी अद्भुत बात हम पाते हैं, यही सुगंध प्रभु यीशु की संगति से हमारे जीवन में आ जाती है। उसकी मेज पर बैठने से ऐसा होता है, यदि प्रभु भोज उसके साथ सच्ची संगति का समय हो तो वह वास्तव में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यदि वह वास्तव में आपके लिए एक परंपरा है तो वह किसी काम का नहीं है। मुझे एक स्त्री ने पत्र लिखा, मैंने कभी किसी को कहते नहीं सुना कि हमें प्रभु यीशु से कहना है कि हम उससे प्रेम करते हैं। मैंने उससे कहा तो नहीं, पर मैं उससे प्रेम करती हूं। परंतु जब से आपने कहा कि हमें सुबह, दोपहर और रात उससे कहना है कि हम उससे प्रेम करते हैं, मैं खोए हुए समय की क्षतिपूर्ति कर रही हूं। मैं उससे कहती हूं कि मैं उससे प्रेम करती हूं। उसने यह भी लिखा, परमेश्वर के वचन में नया अर्थ और नया रंग आ गया है। अति अद्भुत। हमें अपने जीवन में मसीह की सुगंध पाना आवश्यक है। हम देखते हैं आगे, छातियों के बीच में लोबान की थैली। वधू की यह बात अत्यधिक घनिष्ठता की है, परंतु उससे दूर ना भागें। श्रेष्ठ गीत 1:13 में लिखा है, मेरा प्रेमी मेरे लिए लोबान की थैली के समान है जो मेरे छातियों के बीच में पड़ी रहती है। विश्वासी के लिए लोबान की थैली प्रभु यीशु का प्रतीक है। यीशु के जन्म पर ज्योतिष लोबान की भेंट ले आए थे। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद यूसुफ निकोदेमुस उसकी मृतक देह पर लगाने के लिए लोबान लाए थे। लोबान उसके जन्म से मृत्यु तक के संपूर्ण जीवन का प्रतीक है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु रात में आपकी छाती और आपके मन पर भारी होना चाहिए। रात में नींद खुलती है तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपको अगले दिन की चिंता सताने लगती है? मैं स्वीकार करता हूं कि मैं बहुत चिंता करता हूं, परंतु चिंता से हटकर प्रभु यीशु पर ध्यान लगाना अति उत्तम है। हमें फिलिपियों की पत्री 4:8 का बोधन स्मरण रखना है। इसलिए हे भाइयों, और जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु का ध्यान किया करो, क्योंकि सद्गुण और सब कुछ वही है। लोबान की थैली मेरे प्रिय की ओर से मेरे लिए सर्वोत्तम है, जिसे मैं नींद में अपनी छाती से बांधता हूं। ट्रॉथ फ्लाइट स्पाउस की ये बात है। मेरा एक मित्र कहता है, जब मैं रात में सोने जाता हूं तब मैं अपनी चादर खींचकर ऊपर देखकर कहता हूं, प्रभु यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आइजैक वाट्स ने कहा, लोबान पेड़ का लहू है, वैसे ही मरने वाला मसीह मेरे लिए है। जब वह मेरी आत्मा को अपना अतिथि बनाता है तो प्रभु मेरी छाती तेरा विश्राम स्थल है। ओह मेरे मित्रों, हम प्रभु यीशु मसीह का ध्यान करें, वह कैसा महान है। और तब अर्सकिन ने भी लिखा, इस खुली थैली से उसकी सुगंध व्याप्त होती है। मेरे देहधारी परमेश्वर में ऐसी जटिल सुगंध है। मेरे मित्रों, जब आप मसीह जीवन का सूत्र या अनुष्ठान का पालन करते हैं तो आप बहुत कुछ खो देते हैं। उसे अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं जो उत्साह, उन्माद, सहभागिता और आनंद लाता है। उसका अनुग्रह, प्रेम, दया सब आपके हैं। बस आप द्वार खोल दें, यीशु दस्तक दे रहा है। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं कि मेहंदी के फूलों के गुच्छे। वधू अपने वर में प्रसन्नता की चर्चा कर रही है। श्रेष्ठ गीत 1:14 में लिखा है, मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान है जो इनगदी की दाग की बारियों में होता है। यह मेहंदी अरबी मेहंदी है। इसकी छाल काले रंग की होती है और पत्तों का रंग हल्का हरा होता है। इसके फूल सफेद रंग पर पीलापन लिए हुए होते हैं, जो देखने में सुंदर और सुगंध में मनभावन है। आज भी उतना ही सराहनीय है जितना सुलेमान के युग में था। महिलाएं इसे बहुत पसंद करती हैं और अपने घरों में सुगंध के लिए रखती हैं। मेहंदी के फूलों से वर की तुलना कैसी उत्तम है, आप इसे देखिए। मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान है जो एनगदी की दाग की बारियों में होता है। एनगदी मृत सागर के निकट रेगिस्तान में मरुधान है, वहां पानी के सोते हैं। आपको स्मरण होगा कि दाऊद जब शाऊल से जान बचाकर भाग रहा था तब इसी क्षेत्र में छिपा था। छिपने के लिए वह स्थान बहुत अच्छा है, वहां मसाले भी उगाए जाते हैं। वह निर्जन रेगिस्तान में एक प्राकृतिक सौंदर्य है। यहां वर की तुलना एनगदी के अंगूर के बगीचों में उगने वाली मेहंदी के गुच्छों से की जाती है। वह उन पौधों के समान आकर्षक एवं सुगंध से भरा है। हमारा प्रिय प्रभु यीशु इसी प्रकार आकर्षक और सुगंधित है। मैं प्रभु यीशु के ईश्वरत्व की अधिक चर्चा करता हूँ, परंतु यह भी सोचता हूँ कि क्या मैं उसकी व्याख्या को विकृत तो नहीं कर रहा हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि वह देखने में कैसा रूपवान होगा? उसने हमारा मानव स्वभाव अपनाया था और हमारी ही तरह हर एक बात में परखा गया, परंतु पाप में नहीं गिरा। उसमें पाप नहीं था, अति अद्भुत बात है। उसके व्यक्तित्व में कुछ भी विकार नहीं था। पुराने नियम में अन्न बलि मसीह के मनुष्यत्व का प्रतीक है। वह आटा उच्च कोटि का आटा, भली भांति गूथा हुआ आटा था। आज हम में से अधिकांश विश्वासी गांठदार हैं, शरीर से नहीं मानसिकता में। हम किसी न किसी रूप में विकृत हैं। हम सब की कोई न कोई असामान्यताएं हैं। एक पुरुष किसी से बात कर रहा था। उसने कहा, आप जानते हैं हम सब में कोई न कोई अनोखापन होता है। उसके मित्र ने कहा, मैं नहीं मानता कि मुझ में कोई अनोखापन है। पहले व्यक्ति ने कहा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप सीधे हाथ से कॉफी में चम्मच चलाते हैं या उल्टे हाथ से? उसने उत्तर दिया, सीधे हाथ से। तब उसने कहा, यही आपका अनोखापन है। हम गांठदार हैं, परंतु प्रभु यीशु ऐसा नहीं था। वह देह धारण में एक सिद्ध मनुष्य था। वह मन भावन है, वह मेहंदी के फूलों का गुच्छा है। उसके विषय यहूना बपतिस्मा देने वाले ने बड़े उत्साह और महान सद्भावना से कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 29 पद में, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उसकी वाणी सुनकर आपकी आत्मा जीवित हो जाती है। भजन संहिता 34:8 में भजनकार कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। प्रभु यीशु बलि का पात्र था, जैसा पौलुस भी कहता है इफिसियों की पत्री 5:2 में, हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। वह होम बलि को प्रकट करता था जो स्वर्ग तक उठती थी। यह वह तथ्य है कि परमेश्वर आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु के काम से पूरी तरह संतुष्ट था। उसने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 3:17 में, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। उसने आपके लिए और मेरे लिए तो ऐसा कुछ नहीं कहा, परंतु यीशु के लिए कहा कि वह उससे अति प्रसन्न है। मेरे मित्रों, क्या आप मसीह यीशु से संतुष्ट हैं? मेरे विचार में अधिकांश जन संतुष्ट नहीं है। यदि वे होते तो सांसारिक वस्तुओं में संतोष खोजने की, यहां वहां भागने की जरूरत नहीं पड़ती, नई नई वस्तुओं की खोज में नहीं रहते। बाइबल अध्ययन में भी हम इतना अधिक अन्य बातों में व्यस्त हो जाते हैं कि प्रभु यीशु पर से हमारा ध्यान हट जाता है। वह कैसा महान है। मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान है जो एनगदी की दाग की बारियों में होता है। मेहंदी के फूलों के गुच्छे में एक और अतिरोचक उपमा है। धर्मशास्त्र में यीशु के एकमात्र होने पर विशेष ध्यान दिया गया है। वह परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है, वह एकमात्र चरवाहा है, वह एकमात्र सच्ची दाखलता है, वह जगत की एकमात्र ज्योति है, वह पिता का एकमात्र सेवक है, वह पाप की एकमात्र सिद्ध बलि है, वह एकमात्र मार्ग है, एकमात्र जीवन है और एकमात्र सत्य है। उसकी इस अद्वितीय एकता में ऐसी परिपूर्णता है जो कभी खाली नहीं होती। वह सुगंधित फूलों का गुच्छा है, वह एकमात्र तो है परंतु उसमें सब कुछ है। परमेश्वर के इस मेमने में अनेक शालीनताएं समाई हुई हैं। उसमें इनका बहुत अच्छा तालमेल है। उसमें हम अब्राहम का विश्वास देखते हैं, याकूब की कायल करने की शक्ति को देखते हैं, मूसा की विनम्रता को देखते हैं, एलियाह का जोश, अय्यूब की पवित्रता, योहन्ना का प्रेम देखते हैं। ये सब गुण उसमें सिद्ध हैं और बहुतायत से हैं। सत्य, धार्मिकता, ज्ञान, प्रेम, दया, मित्रता, वैभव, सामर्थ, प्रभुता, दीनता, सहनशीलता, विश्वास, पवित्रता आदि सब सद्गुण उसमें पाए जाते हैं। यदि कोई सद्गुण में रह रहा है तो उसे भी इस सूची में जोड़ें, क्योंकि वह सब कुछ है, वह सब कुछ है, वह हमारा प्रभु है, यही तो उसकी विशेषता है। मेरे प्रिय मित्रों, हम इस संसार में रहते हैं लेकिन हमारे जीवन के अंदर में ये सारी बातें चाह कर भी नहीं आती है और इसे हम किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यह सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसी के अंदर में धार्मिकता, प्रेम, दया, प्रेम और मित्रता, ये सब कुछ पाए जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, अब्राहम ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया था, याकूब भी परमेश्वर के निकटता में था, मूसा एक नम्र व्यक्ति था, एलिया जोश में था, अय्यूब की पवित्रता भी परमेश्वर के निकटता में थी। आज मेरा और आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है? क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता, मेरा मुक्तिदाता है, वही मेरे पापों से छुटकारा दे सकता है? आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आए, हमारे मध्य में रहे और उसने हमारे सारे पापों के बदले, जिसकी सजा मुझे और आपको मिलनी चाहिए थी, अपने ऊपर में ले लिया और हमारे बदले में क्रूस पर मर गया। मेरे प्रियो, यह क्या ही अद्भुत प्रेम है। आज कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के लिए अपना जान देना नहीं चाहता है। आज लोग शिक्षा की बातें कहते हैं, आपको बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए तो आपके लिए ये हो जाएगा, आप वैसा कीजिए तो आपके लिए वो हो जाएगा, परंतु कोई भी अपने जीवन के द्वारा नमूना देना नहीं चाहता है। परंतु हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते हुए उसने जो कुछ भी कहा उसने किया, अर्थात उसके कथन और करने में तनिक भी अंतर नहीं था। उसने वही किया जो उसने कहा, क्योंकि वह पूर्ण था, वह परमेश्वर का पुत्र था जो मनुष्य के रूप में हमारे मध्य में था, ताकि हमें उद्धार दिलाए, अपने जीवन को हमारे लिए बलिदान करे, उस पवित्र लहू को बहा दे। मेरे मित्रों, आज आप जीवित हैं तो आप ये न सोचें कि आप बहुत अच्छे और भले काम करते हैं इसलिए आप जीवित हैं, परंतु आप जीवित इसलिए हैं क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपके बदले में, आपके गुनाहों के बदले में, आपके पाप के बदले में सजा काट ली है, वह आपके लिए मर गया है, और यही कारण है कि आज आप बचे हैं। लेकिन आपके लिए अवसर है कि आज प्रभु यीशु पर विश्वास करें, अपने पापों को जो आपने किए हैं प्रभु यीशु के सामने मान ले और उससे कहें कि प्रभु, मैं नहीं जानता था कि आपने मेरे पापों की सजा उठाई है और मुझे उस भयानक मृत्यु और दर्द से बचाया है। आज मैं अपने पापों के लिए क्षमा चाहता हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। मैं भी अपने जीवन में उस उद्धार के आनंद को पाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मेरे प्रियो, जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, उससे मांगते हैं, तो निश्चय ही प्रभु आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि वह दयालु और प्रेमी परमेश्वर है। वह आपसे प्रेम करता, वह आपकी चिंता करता है। यदि आप चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में प्रभु को आमंत्रित करें, उसे आने दें, तो आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए और आज के अध्ययन के द्वारा से इस बात को स्वीकार कीजिए कि प्रभु आपको शांति और आनंद दे सकता है। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीत वचन के लिए कि आपने इस बात का हमें स्मरण दिलाया है कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आप इस पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि आप हमारे पापों से हमें छुटकारा दें। आज हमारे बहुत सारे जवान भाई बहन, माता पिता आपके प्रेम से, उस सच्चाई से वंचित हैं, आपको नहीं जानते हैं। हमारी प्रार्थना है कि जो इस समय इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनके पापों के लिए आपने अपनी जान दी है, पिताजी आप उन्हें क्षमा करें, उस लहू से धोएं और शुद्ध करें, पवित्र करें, ताकि अपने जीवन में आपको पाकर उस उद्धार के आनंद को महसूस कर सके, आपको धन्य कहने पाए, आपकी स्तुति और महिमा करने पाए। आज की इस घड़ी प्रत्येक भाई बहनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं, हर एक पर अपनी आशीष दे। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज आपने अपने जीवन में एक सही निर्णय लिया है और परमेश्वर के लिए निरंतर उसमें बने रहेंगे। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे, कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ न दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा तुझे कुछ ना दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप भूल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा।